ॐ शांति ॐ शांति। आज हम सब बच्चों के सामने बाप एक क्षमा के रूप में आए हैं। बाबा कहते हैं बाप क्षमा है और बच्चे परवाने हैं। अब परवाने भी तीन प्रकार के होते हैं। एक है पहचान करके उस पे फिदा हो जाना, और दूसरे हैं देखते हुए चक्कर लगाते रहते हैं, और तीसरे हैं बहुत दूर से आए और चले गए। तो आज हम सब अपने आप को चेक करेंगे कि हम कौन से परवाने हैं। क्षमा हमारे सामने है और हम परवाने उस क्षमा पर कहाँ तक फिदा हुए हैं। अगर पूरे फिदा नहीं हुए हैं तो बीच में ऐसे ही ऊपर नीचे होते हैं। बाबा ने कहा कि बाप हुसैन बनकर के आया है, तुम बच्चों को बहुत सुंदर बनाने के लिए, लेकिन चलते चलते बच्चे क्यों अपना मुंह काला कर लेते हैं। बाबा कहते मैं इतना ऊंच बनाता हूँ फिर भी क्यों गिर जाते हैं, क्यों बाप को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप आते हैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाने के लिए। बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, विश्व की बादशाही नहीं लेता हूँ, तुम बच्चों को ही देता हूँ, तुम डबल प्राप्त करते हो, मैं तो केवल आकर के बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनाता हूँ। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे क्यों भूल जाते हैं, तो ऐसे बाप को तो भूलना नहीं चाहिए ना। तभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 5 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खूबसूरत देवी देवता बनाने, खूबसूरती का आधार है पवित्रता। मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने, खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न है रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है फिदा होने वाले परवाने, पहला क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। क्षमा को यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा है फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जा। कितनी बड़ी बात कि बाबा से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाते। तो पहला क्या बताया था, जो पहला है क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। एक है जानना और दूसरा याद करना। दूसरा फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी, ये कौन समझाते हैं, कौन बता रहे हैं? रूहानी बाप वह क्षमा भी है, बाप के ढेर नाम रखे हुए हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते, बाबा के नाम भी बहुत है, बाबा की महिमा भी बहुत करते हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है। कौन सी? रूहानी क्षमा। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। अच्छा, बाबा किसके लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? बोलो, हम परवानों के लिए। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ दे। जब होता है ना, दीपावली का दिन होता है, दिवाली का दिन होता है, या फिर कभी ऐसे दिन होते हैं लाइट जलती है, ढेर के ढेर मच्छर आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और सुबह उठो तो सारे के सारे कोई ना कोई फिदा हुए पड़े हैं। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो अपने प्राण दे देते हैं, उसमें भी खास जब दीप माना होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव देर रात को मर जाते। शाम को लाइट जली और ढेर मच्छर आते हैं, जैसे ही रात को लाइट आदि बंद करते हैं तो सुबह देखेंगे तो ढेर गिरे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं, उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव देर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है ही सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर। बाबा जैसा खूबसूरत तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आते हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं, फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती, जब पवित्र है तो बिल्कुल प्योर है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है, उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती, तो ऐसे ही होता है, दुनिया का सिस्टम है नया और पुराना, शरीर का भी सिस्टम है नया और पुराना बनना। तो बाबा कहते दुनिया नई और पुरानी होती है, वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं ना, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है। आत्माओं को क्या करते हैं, इम्प्योर से प्योर बनाते। पुकारा, पुकार सुन के आया, तो बाबा कहते हैं आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो कई बहुत खूबसूरत है, क्या उनकी आत्मा पवित्र है? भल शरीर की ब्यूटी है लेकिन आत्मा तो पवित्र नहीं है ना। ऐसे नहीं कि आजकल कोई खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र नहीं है, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। ऐसा नहीं कि शरीर सुंदर है तो आत्मा प्योर है, बिल्कुल नहीं। फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सत्ययुगी खूबसूरत, और यहाँ है नरक की खूबसूरती। लक्ष्मी नारायण जैसे फीचर, उनकी ब्यूटी, उनकी रॉयल्टी, वो तो नहीं हो सकती ना। यहाँ पर तो कोई कितना भी होगा ना, थोड़ा बहुत भी होगा, उनकी रॉयल्टी नहीं है, उनका कुछ ना कुछ इस प्रकार के व्यवहार के कारण खूबसूरती तो नहीं है ना। तो बाबा कहती हैं लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे, आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलता है। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है, यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को, पूरी दुनिया को खूबसूरत बना। बच्चों को तो बनाते हैं, तो बाबा कहते सारी पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, पवित्र बनने के लिए। जब पवित्र बनते हैं तो शरीर भी सुंदर मिलता है और सारी दुनिया भी सुंदर बन जाती है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर क्या करते हैं, बच्चे तो बाबा की महिमा कम गाएंगे, कभी भूलेंगे कभी याद करेंगे, लेकिन बाबा क्या करते हैं, बाबा सदा ही बच्चों की महिमा गाते। कैसा भी बच्चा हो बाबा बच्चों को प्यार भी करते हैं, महिमा भी गाते हैं। बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं, तुमको ऐसा बनाता हूँ जो तुम्हेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ वह कोई नहीं जानता। कितनी बड़ी बात, नशा होना चाहिए। बाबा हमको अपने से ऊंच बनाते, लेकिन बाबा फिर भी कितने निरहंकारी हैं। फिर बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, दुनिया में तो कोई नहीं जानते ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आए हैं। हम शूद्र कुल में थे, अब फिर ब्राह्मण कुल में आए हैं, ये भी तुम्हारा वरण है। और कोई धर्म वालों के लिए ये वरण नहीं होते। आदि सनातन देवी देवता धर्म में होता, ये देवता धर्म है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है कि देवता वैश्य शूद्र। तो बाबा कहते हैं और धर्म में वालों के लिए वरण नहीं है, उनके वरण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वरण होता है। एक ही बात कहेंगे, हम क्रिश्चियन है, हमारे क्रिश्चियनिटी है, लेकिन यहाँ तो क्या कहेंगे, देवताएं हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। अभी भी पूछेंगे ना, हम क्षत्रिय कुल के हैं, तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन तो चले ही आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी ये वर्ण आदि तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते, सृष्टि चक्र जरूर बोलते हैं लेकिन इसका राज क्या है, कैसे चलता है, बाबा कहते केवल बेहद का बाप बैठ समझाते। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो क्या कहते हैं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बल शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि वे कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। शिव बाबा कौन है, आके क्या करते हैं, उनकी जीवन कहानी क्या है, क्या करते है, वो तो नहीं जानते ना, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये वह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझा दू। बाबा क्या कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प ही समझाता। दुनिया वाले तो इसको जानते ही नहीं है कि कल्प कैसे चलता है, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, तुम जन्म भी लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो फिर क्या होता है, सारा आधार तुम बच्चों पे, तुम तमो प्रधान तो सृष्टि भी तमो प्रधान, तुम सतो प्रधान तो सृष्टि भी सतो प्रधान हो जाती है। बाबा कहती हैं तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तो इसका सार क्या हुआ, तुम बच्चे ही हर चीज के आधार हो, तुम श्रेष्ठ तो दुनिया श्रेष्ठ, तुम तमो प्रधान तो दुनिया तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते बच्चों को इस पे भी ध्यान देना है। तो सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती, फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। अभी है कलयुग और उसके बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाप कहती है मैंने साधारण तन में हू भू कल पहले मौर्फिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा फिर से सिखाने के लिए, पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखाया, फिर भी सिखाना है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने, आजकल योग तो बहुत है, बैरिस्ट्री योग है, इंजीनियरिंग योग है, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लग जाए। कोई भी पढ़ाई पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले और उस पढ़ाई से बुद्धि लग जाती है ना, तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बनने वाले हैं तो उनको याद रहता है, बैरिस्टर बनेंगे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो बात सकेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद हो जाएगा। बैरिस्टर के साथ योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं, पढ़ाने वाले को याद करते हैं, उनको तो अपना, उनकी तो अपनी बात अलग है, गुरु भी होगा तो भी उनको याद करे। उनका गुरु अलग होगा, पढ़ाने वाला अलग होगा, बाप अलग होगा, लेकिन हम बच्चों के लिए बाप भी वही है, टीचर भी वही है और गुरु भी वही है। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनने के लिए अभ्यास करते ना तो वो संस्कार आ जाते हैं। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के लिए संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अभी बाप कहते हैं बच्चे क्या बनो, बोलो देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही तो पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनते, शरीर जज नहीं बनता। पढ़ती आत्मा है किसके द्वारा, शरीर के द्वारा। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। वो क्या बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बनेंगे, और हम क्या बन रहे हैं, बोलो क्या बन रहे, बोलो विश्व का मालिक, नशे से बोलो ना, विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। उसके लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति। और किसका सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर, और बोलो हैं, पवित्रता का सागर है, और बोलो। आज बाबा ने कहा वो संपत्ति का सागर, इतनी संपत्ति देता, इतनी संपत्ति देता, वो खत्म ही नहीं होती, लास्ट तक चलती रहती है। वही ज्ञान का सागर, शांति और संपत्ति का सागर है, सागर है। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है कौन सी थालियां निकलती, वो तो कहेंगे रत्नों की थालियां निकलती है। आपके पास कितनी थालियां निकली है, कभी गिनती कर सकते हो? भरती जाती भरती जाती भरती जाती, ज्ञान सागर से इतनी थालियां निकली, सब जमा करते रहते ना। तो बाबा कहते ये भी रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते। जितने ज्ञान रत्न यहाँ, उससे ज्यादा हीरे जवाहरात हमको सचिव में मिलते हैं। फिर तुमको बहुत ज्ञान रत्न मिलते हैं। ये एक एक रत्न, इसकी क्या वैल्यू है, बोलो एक एक रत्न की कितनी वैल्यू है। बाबा के टाइम तो उसमें तो लाखों, और अभी क्या कहेंगे, करोड़ों और अरबों के हैं। एक एक रत्न की लाखों रुपए का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला होता है ना, आत्मा शरीर में है तब तो सुन सकते हो, शरीर में नहीं आत्मा तो क्या सुनेंगे। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी तो शरीर में आता आएगा तब तो बच्चों से बात करेगा ना। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर कहाँ है, शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ होती है, शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, शरीर ही नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है, वहाँ चुरपुर आदि होती नहीं। यहाँ परमात्मा बाप आकर के बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, शिव बाबा मिलते थे तो सब तो भाई भी हैं, बहने भी हैं, बच्चे भी हैं। तो शिव बाबा जब बच्चों से मिलते थे सबको, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, पुरुष हो, बाबा कहते बच्चे बच्चे आओ। और ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बच्चा आओ बच्ची आओ। तो बाबा शिव बाबा सबको बच्चे, क्योंकि वो आत्मा को देखते थे। तो बाबा कहते हैं शरीर सहित मिलते हैं, वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते। याद है किसने मंदिर बनाया है? जिसने बनाया तो अपने को बताओ, किसने बनाया? हम बच्चों ने बनाया, एक ने बनाया या सबने बनाया? सबने मिलके बनाया ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बनाते, नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं, बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? वही चित्र है घर में रख सकते हैं, लेकिन मंदिर का भावना और मंदिर का वातावरण तो अलग होता है ना, फिर दूर दूर इतना दूर क्यों जाते हैं? ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? विष्णु का तो चित्र होगा ना, होगा, लेकिन सिंबल के रूप में, पूजा नहीं करेंगे। वो हमारा विश्व महाराजन है, वो होगा, लेकिन मंदिर नहीं होगा, पूजा नहीं करेंगे। वहां पर क्या होगा है, क्या होगा बताओ? पिकनिक स्पॉट होंगे ना कि नहीं? मेरठ क्या होगा, पिकनिक स्पॉट होगा या राजधानी के पास होगा? अब ये बताओ है, क्या बोला? अब वो पिकनिक स्पॉट होगा या राजधानी के पास होगा? राजधानी के पास ही होगा ना, राजधानी के बीच में नहीं होगा। फिर दूर कर दिया, बोलो कि हम राजधानी में ही होंगे, मेरठ नाम ही नहीं होगा। वो सब इतने बड़ी इंद्रप्रस्थ होगी तो उसमें क्या करेंगे, छोटा सा शहर को थोड़ी ऐड करेंगे। तो बाबा कहते हैं वहां है, दूर दूर मंदिर क्यों जाते हैं? ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में मंदिर आदि होते नहीं, वहां है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम जन्म, ये अंतिम पुरुषार्थ शरीर बहुत मोस्ट वैल्यूएबल। अब क्या बात बाबा ने बताई? बाबा हमेशा कहते थे शरीर का भी बैलेंस रखना, इसका भी ध्यान रखना है, आत्मा का भी ध्यान रखना है। कई बार आत्मा का ज्यादा ध्यान रखते हैं, शरीर को इग्नोर करते, तो बाद में वो फिर सहयोग नहीं देता है, बैलेंस नहीं होता है। तो बाबा हमेशा कहते थे इतना वैल्यूएबल शरीर है, इसके द्वारा ही तो बाबा से मिलन और ज्ञान रतन जमा कर सकते हैं। तो बाबा कहते इसका भी ध्यान रखना है। इससे में तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, इससे तुम बहुत कमाई करते हो, बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। साकार बाबा से मिलते थे, बाबा के साथ बाबा बच्चों को बुलाते थे, अपने साथ बिठाते थे, बाबा बच्चों को भोजन भी कराते थे, टोली भी खिलाते थे, बाबा बच्चों का हाथ पकड़ करके ले भी जाते थे, घुमाते भी थे, फिर बाबा बच्चों के साथ खेल भी करते थे। जो उस नशे में होते थे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी करते थे। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी तो उनको ही हो ना, किसी और को थोड़ी पुकारा है। ऐसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण से खाऊं, ऐसे थोड़ी कहा। श्री कृष्ण को देखना पसंद करते, लेकिन बाबा के साथ क्या होता था? बाबा के साथ बैठे, बाबा से बात करें, बाबा से मिले, और बाबा सब बच्चों को जब पार्टी आती थी ना, उस समय बाबा के टाइम एक बाबा ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। आज ये ग्रुप आया है, बाबा बैठेंगे और बाबा सब के साथ मिलकर के ब्रह्म भोजन करेंगे। उस समय तो थोड़ा ही था ना, हिस्ट्री हॉल की छत के ऊपर गर्मियों के टाइम पर, शाम के टाइम पर बाबा छत पे बैठते थे और ग्रुप ग्रुप का प्रोग्राम होता था। बाबा के सामने बैठते थे, एक फोटो भी आपने देखा होगा, चौरस बैठे हुए हैं, सब बाबा के सामने बैठे हैं, बस वो नशा रहता था। बाबा हमारे सामने हैं, इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे सामने है, तो वो नशा चल जाता था। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते। दूसरा नशा, भक्ति में गायन किया, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यहाँ के बालक क्या करते बोलो, है बाप के साथ सदा कुछ भी नहीं करते, बात ही पूरी हो गई। बोलो ना हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में गायन किया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। और यहाँ बालक ऐसे हैं, बच्चे हैं, सारा टाइम बाप के साथ खेलते हैं। खेलना तो क्या, इतना नटखट करते, इतने नटखट हैं, बाबा को बोलेंगे बाबा ये नहीं होता, बाबा हमारा काम कर दो, बाबा हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ बाबा। अरे ये क्या नाटक करते रहते हैं, क्यों नाटक करते रहते हैं, क्योंकि नटखट है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये बालक क्या करते बोलो, कुछ नहीं करते तो क्यों बताएंगे, है ना, तो है तो बोलो, बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, कितना मजा आता है बाबा के घर में आने में। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो याद करते हैं, तुम मात पिता बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते, कितने लाडले हैं, पूरा टाइम बाबा के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को प्यार करेंगे, साथी हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम उनके बालक हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती हैं, आप आएंगे हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। भक्ति में ऐसा तो नहीं कहा ना, लेकिन बाबा के बच्चे को बाबा क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं बाबा हम तो सदा आपके साथ रहे। तो बाबा वो अनुभव भी कराते थे, बाबा बच्चों को कभी घुमाने ले जाते थे, बाबा बच्चों के साथ खेल पाल भी करते थे, कभी कभी बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे। और बाबा तो इतनी बड़ी अथॉरिटी और इतना अच्छी तरह से, बाबा हर बार जीत जाते थे। और फिर एक बार बाबा ने बच्चों का उमंग उत्साह को कायम रखने के लिए बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऐसे खेला जैसे कि बाबा हार गए तो बच्चे जीत गए, और बच्चे बाबा को कहते बाबा बाबा आज हार गए, बाबा कहते बच्चे बाप के गले का हार बन गए। तो बाबा कभी भी किसी चीज में बच्चों को निरुत्साहित नहीं करते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाप के गले का हार बन गए हैं। तो इतना बाबा बच्चों को लाइट भी रखते थे, बाबा भोजन भी करते थे, बच्चों के साथ घूमने भी ले जाते थे, बच्चों के साथ खेल पाल भी करते थे, लेकिन एक बात बाबा को हमेशा रहती थी कि बच्चे मर्यादा में रहे, मर्यादा ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा, फिर तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाबा कहती हैं, आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम ही कहते हो ना बाप दादा, तो जैसे घर हो गया ना, अभी कहते ना कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे। मधुबन क्या कहते हैं, अपने घर जा रहे। भक्ति वाले दूसरे लोग क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, संस्था में जा रहे हैं। और ब्राह्मण क्या कहते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। तो जैसे घर हो गया ना, बाप दादा और बच्चे, घर में कौन कौन है, बाप दादा और बच्चे। ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता, बाप इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुख वंशावली। जैसी स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी, कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे कुंख वंशावली बच्चे पैदा करते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहती है मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। उनको माता का टाइटल मिला। बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा को कौन सा टाइटल दिया? इनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना, बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता। ब्रह्मपुत्रा और सागर का ये कलकत्ता में ही बहुत बड़ा मिलन वहाँ मेला लगता है। तो बाबा कहते ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहीं लगता नहीं। वह नदियों का मेला, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। आत्माओं और परमात्मा का मेला कब लगता है? संगम युग पर, जब बाबा शरीर में आते हैं। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इसमें कलप कलप प्रवेश करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा का ये रथ भी फिक्स है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र का ज्ञान है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते। ये बेहद की फिल्म है और दूसरी फिल्म में ड्रामा जो है वो इस बेहद के ड्रामा और हद बेहद की फिल्म से बनाते हैं। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुए? 5000 वर्ष। नई दुनिया को बाबा कहते 5000 वर्ष हो गए ना। अभी तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी, आज का टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी हो। अभी तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के तीन धर्म इकट्ठा स्थापन करते। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाप आकर के तीन धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर खलास कराओ। अब ये तो नहीं बोला कि शरीर खलास, यही सब अंडरस्टूड है कि सदगति में जाना है, हमको जाना है तो ये पुराने शरीर तो नहीं जा सकते ना, तो शरीर खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जब हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ तो नहीं ले जा सकते। ज्ञान देगा क्या करना है वो थोड़ा बताएगा, लेकिन साथ तो नहीं ले जा सकता ना। परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाए शांति धाम में साथ तो नहीं ले जा सकते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल और महाकाल सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। वह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छी छी शरीर पुराने कलयुगी दुनिया के अंदर शरीर को भी कई प्रकार के दुख रोग बीमारियां लगी हुई ना, तो बाबा को कहना पड़ता है ये है छी छी शरीर, इनके बंधन से छूटना चाहते हो ना। कई प्रकार कभी होता है ना तकलीफ होती है तो कहते हैं ऐसा बंधन कब छूटेगा, इनके बंधन से छूटना चाहते हो, कहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे। शरीर के छोड़ने से बंधन नहीं छूटता, और ही जो रहा हुआ हिसाब किताब वो तो चलता रहता ना। तो श्री बाबा कहते इसी शरीर में ही अपने को निर्बंधन बनाना है। तो कहते कहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे, अभी तुमको इन सभी आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। बाप कहते हैं मैं कौन हूँ अब बताओ। बाबा कहते मैं कौन हूँ, एक तो बाबा ने कहा मैं शमा हूँ, दूसरा हुसैन हूँ, तीसरा अब बाबा ऐसा कहते जो हम बच्चे तो नहीं कह सकते। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा ओबीडेंट। अब बताइए बाबा इतना ओबीडेंट है, ओबीडेंट सच्चा फादर भी हो, ऐसा बाप दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है ना, बच्चा कहेगा ये चाहिए ऐसा करना ऐसा करना, बाप क्या करता है उसकी सर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भी हो जाए इतनी भी मेहनत करनी पड़े करता है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है ना, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर सिर्फ फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते। तो ऐसे बाबा ने भी ना उससे कहानी बताई कैसे बाप का ब्रह्मा बाबा का लौकिक फादर था, और जब उम्र हो गई तो ब्रह्मा बाबा को कहा कि मेरे को वानप्रस्थी में ले चलो, तो बाबा ने क्या किया सब कुछ उनको दे करके वहां पर भेज दिया और उसने भी बच्चों को दे करके वानप्रस्थी बन गया। तो बाबा कहते हैं खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता, सिंगल नहीं डबल। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ, तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बन, डबल मालिक, विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का मालिक बनते, तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। बाबा देखो बच्चों को चढ़ा रहे, तुम्हारी पूजा भी डबल होती, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वरन में भी पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ सिंगल शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, मैं तो राजाओं का राजा नहीं बनता हूँ। बाबा बच्चों को कितना ऊंच बनाते, मैं राजाओं का राजा नहीं बनता हूँ, तुम बच्चे बनते हो, मैं तो राजाओं का राजा बनता ही नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी, बाबा क्या करते हैं कितनी सेवा करते हैं। बाबा बच्चों को इतना ऊंच बनाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, फिर भी बच्चे क्या हैं क्या करते हैं, मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ, मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। कोई किसी को थोड़ी सी भी चीज दे देगा, टाइम पर मदद करेगा, उसको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन बाबा इतना करते हैं फिर भी बाबा कहते हैं ऐसे बाप को तुम फिर भूलते क्यों हो। हे आत्मा, बाबा हमेशा हे आत्मा, कभी कभी बाबा कहते हे बच्चे, तो बाबा कभी कहेंगे लाडले बच्चे, तो आज बाबा कह रहे हैं हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? बोलो, किसके पास आए हो? अपने बाबा के पास आए हैं। तुम किसके पास आए? पहले बाप फिर दादा। कहते ना बाप दादा के बाप। पहले बाप कौन? शिव बाबा। दादा कौन? ब्रह्मा। तो तुम कहेंगे पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को तो कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को कहते, शिव बाबा को नहीं कहते। वो तो सबका ही पिता है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि कहेंगे। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते। ऐसा बाबा मिलता है उनको, फिर भी तुम क्यों भूल जाते हो? ऐसा बाबा जो सब कुछ देता है, विश्व के बादशाह देता है, तो बाबा कहते फिर तुम ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? तो बाबा बता रहे हैं, शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है उनको तुम फिर भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? फिर बाबा कहते भल भूल जाओ, लेकिन पावन कैसे बनेंगे? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप तो पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे क्या करना है? देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, अनुभव करो जो बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बन। देखो बाबा को क्या कहना पड़ता है कि केवल एक जन्म मेरे खातिर है, हम बच्चों के खातिर, लेकिन बाबा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो। फैमिली में भी माँ बाप को रहता है कि बच्चे इतने अच्छे बने, घर का नाम खराब नहीं हो। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। परलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो। बाबा कहते मैं इतना ऊंच बनाता हूँ फिर क्यों ऐसे हो जाता? परलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। किस किस की इज्जत गवाएंगे? अपनी तो गवाएंगे ही, बाप की इज्जत भी गवाएंगे और ब्राह्मणों की भी इज्जत गवाएंगे। कोई भी गलत काम करता है ना तो लोग क्या कहते हैं, आप इस संस्था में जाते हो, इतनी बड़ी अच्छी संस्था है, बहुत अच्छे सब कुछ है, तुम ऐसा क्यों करते? अपनी भी इज्जत गई, बाप की भी गई, विद्यालय की भी गई, पूरे ब्राह्मण परिवार की भी जाती है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो इज्जत गवाएंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया। कई तो बाबा को सच्चाई से लिखते थे, बाबा ये भूल हो गई है, बाबा ऐसा हो गया, तो बाबा उनको से समझाते थे आगे से मत करना। कई ऐसे होते थे, पता भी होता था, लोगों को पता भी पड़ जाता था, लेकिन बताते नहीं थे। तो लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हुसैन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह क्यों करते हो? क्यों ऐसा कर देते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें ही बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते और सब कुछ करते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार के व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आज का व्यक्ति इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प के वृद्धि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। वृद्धि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। वृद्धि क्लियर है, तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। वृद्धि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। क्या
हिस्ट्री हॉल में मिला?
अच्छा, ये एक मोबाइल मिला है हिस्ट्री हॉल में, जिस किसी का हो तो ले सकते हैं। एक मोबाइल मिला है। अच्छा, अभी आज तो भट्टी वाले जा रहे हैं और बाबा के घर में आए। बाबा ने हर तरह से भरपूर किया और अभी बाबा के साथ के अनुभव करते हुए अपने सेवा स्थान पर जाएंगे। उन अनुभवों से दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। अच्छा, ओम शांति। नीचे शांति वन में तो एक टीचर्स बहनों की भट्टी चल रही है और साथ साथ कुमारियों की भी भट्टी चल रही है और भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं। ज्ञान सरोवर में महिला विंग का भी प्रोग्राम चल रहा है। चारों तरफ ही बाबा के बच्चे और साथ साथ सेवा भी चल रही है। तभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।